نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مال الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي انفال عمر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد Hazreti Cabir radıyallahu ta'ala ایک حدیث روایت فرماتے ہیں بڑی عجیب و غریب حدیث ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم حدیث کیسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور امت کے لوگوں کی مثال پیش فرمائی یعنی میری اور میری امت کے لوگوں کی مثال ہے فرماتے ہیں کہ جیسے آگ روشن ہو گئی آگ لگی ہو جل رہی ہو اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آگ چلتی ہے روشن ہوتی ہے تو اس میں بڑی تیزی کے ساتھ پروانے جو ہیں وہ لپکتے ہیں پتنگے جس کو ہم کہتے ہیں اپنے ملک میں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آگ لگے شمع جلا دیں یا کوئی دیا ہی جلا دیں لائٹ ہی جل رہی تب بھی آتے ہیں تو پروانہ وار وہ چیز کرتے ہیں پروانے اس پہ ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں آگ کی طرف بڑھتے ہیں اور آگ چل رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ اور پروانے بھاگ رہے ہیں لیکن شخص ترس کھاتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں ہے کہاں جا رہے ہیں وہ ان کو رخت ہے لیکن وہ رکنے کے بجائے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے اس کو چکر دے کے آدمی کو جانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ وہ آدمی اس کو بڑا تنگ کر رہے ہیں روک رہے ہیں ایک اچھے راستے سے جانے سے سبحان اللہ ارشاد فرماتے ہیں نبی قسم کہ یہی معاملہ ہے آپ لوگوں کا دنیا کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے اور وہ آگ کون سی ہے گناہوں کی آگ ہے عجیب بات ہے گناہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی ایک آگ ہے جس طرح پروانے سمجھ نہیں رہے اس آگ کی طرح بھاگ رہے ہیں اور بھاگنے کے بعد جب پہنچتے ہیں ہوتے تو خوش ہیں دیکھ کے بڑی زبردست چیز ہے ہمیں بڑا مزہ آئے گا جائیں گے تو لذت میں مزے میں اس طرح بھاگے جا رہے ہیں لیکن جب چلتے ہیں تو پھر ختم پھر تو پچھتانے کا فائدہ کچھ نہیں ختم ہو جاتا آدمی گناہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں آگ ہے آگ اور لوگ بے تحاشا گناہ کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور بھاگتے ہیں ایک بڑا عجیب نقطہ ہے سوچیں آپ مجھے تو بڑا پسند ہے یہ بات آپ بھی سوچیں کہ گناہ آدمی کیوں کرتا ہے باز نہیں آتے ہم کبھی کہیں گے چھوٹا گناہ ہے کبھی کہیں گے بڑا گناہ ہے پھر توبہ کریں گے پھر گناہ کی طرف جاتے ہیں نہیں بھی ہم اب لڑکیوں کو نہیں دیکھیں گے پھر لڑکیوں کو دیکھیں گے نہیں ہم یہ گندی چیز نہیں دیکھیں گے پھر ہم گندی چیز کر رہے ہیں اس کی پیچھے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے ایسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کے اندر ایک لذت ہے کیا ہے ٹیسٹ لذت چھپی ہوئی ہے اور ہم اس کو لذت سمجھتے ہیں اس گناہ کی لذت کو یہ اصل مزہ ہے اس میں اگر گناہ میں مزہ نہ ہو تو آدمی کوئی بھی گناہ نہ کرے اور حقیقت میں وہ مزہ نہیں ہے یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آگ روشن ہے چمک رہی ہے بہت खूबसूरत लग रही है, बेहतरीन लग रही है, लेकिन है तो नहीं। सुभान अल्लाह। इसी तरह गुनाह जो है, पर क्या फायदा हम देखने किसी लड़की को लस्त आ रही है, मजा आ रहा है, क्या चीज जिस चीज को मना किया है हम वो काम कर रहे हैं, लेकिन क्या है वो लस्त है, नफ्स की लज्जत है। तो हकीकत पता चली है कि जिस वक्त कोई गुनाह आदमी लज्जत के लिए कर रहा है, अट्रैक्शन आ रही है, उसको मजा आ रहा है, तो फौरन रुक जाए, कहते जी वो लज्जत नहीं है, तो भाई ये तो बहुत खतरनाक चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी प्रैक्टिस अगर हो जाए तो बहुत कारामद चीज है, बहुत काम चीज है। कितनी तुझको जिसको तू कर मजा आएगा, ये देख लिया इसको मजा है ना देखना यार, तो फौरन आदमी रुक जाए कि ये मजा नहीं है भाई, ये बिल्कुल मजा नहीं है, तू क्या कर रही है, तो अल्लाह के नबी इसको आराम कहा है, इसमें मजा कहा है, तो ये मजा क्या है, कहते ये मजा वही है जब जिस तरह परवाने आग में जलते हैं, ये वही चीज है, हकीकत में आग है, अगर इसको मजा समझ के मैंने ये काम कर लिया तो मैं आग में जल गया। हर वक्त जब गुनाह की तरफ इंसान को रगबत हो तो एक लज्जत उसको रगबत लाती है उस चीज की तरफ, तो फौरन उस लज्जत को आर्टिफिशियल समझे, मसनू समझे, वो टेस्ट नहीं है, पब्लिक आर्टिस्ट। तो ये जो एक लज्जत इंसान, नबी करीम सरशाद फरमाते हैं कि इस लज्जत जिसे आग रोशन हो रही है तो गुनाह की तरफ भागता है और मस्जिद की तरफ भागता है कि लज्जत है, तो लज्जत नहीं है। नतीजा उसका क्या होता है कि जिस तरह परवाना जल गया, खत्म हो गया उसमें, और सुभान अल्लाह कि वो जिसको रोक रहे आदमी कि भाई इसको बचाओ परवाना जल ना जाए, वो इधर से भाग रहा है, कहते ये हाल तुम लोगों के कि मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ के खींचता हूं उस आग से, उस गुनाह से, मत जाओ, और तुम जाते हो, क्या मतलब। उलमा कराम ने लिखा है बड़ी अच्छी प्यारी बात कि सरकार दौरा किस तरह कमर पकड़ पकड़ के खींचते हैं, आप सलसन के जो इरशादात हैं, फरमुदात हैं, अहादीस हैं, अहकाम हैं, यही तो है जिससे आप हमें बचाना चाहते हैं, ये कमर से खींच रहे हैं पकड़ के। एक हदीस में आता है कि आप मत काम करें, इसका मतलब है क्या, अल्लाह के नबी सलम हमें खींचने के, खबरदार ये काम मत करना, वो बचा रहे हैं। तो कहते हैं मैं खींच रहा हूँ कमर पकड़ पकड़ के, वो कौन सी नौयत है, यही अहकाम अल्लाह के नबी के, अहादीस बातें हुक्म जो हम तक पहुंचा है, तो ये एक वही तो चीज़ है जिससे अल्लाह के नबी सामने रोक रहे हैं कि मत करो ये काम, मत करो। अगर हम वो काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है क्या है कि हम उस परवाने की तरह, आग की तरह भागी रहे हैं हमने। दूसरी बात इसमें क्या है, तो फरमा भाई रोका जा रहा है, कहा जा रहा है काम मत करो, तो उस पर क्या होता है, आदमी समझता है कि एक मुझे मेरे साथ जुल्म हो रहा है, देखो जी हमें मना किया जा रहा है इस काम से, इसमें बड़ा फायदा है, उस लज्जत की वजह से कह रहे हैं, हमें क्यों रोका जा रहा है इस काम से, हमें क्यों मना किया जा रहा है इस काम से, ये तो जुल्म है भाई, ये तो गलत बात है, हम तो दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे अगर हमने काम नहीं किया, अगर ये हमारा खत्म ये काम तो भाई ये तो इस्लाम में बड़ा जुल्म है, ये तो बड़ी सख्ती है भाई इस्लाम में, ये कहते ही नहीं कहते, इतनी सख्ती तो नहीं है भाई इस्लाम के अंदर, तभी तुम ये काम ना करो तो फलाना ना करो, आम बात है, आप किसी को बात बताएंगे समझाएंगे, बहुत आम बात, ये यार इतनी सख्ती कहाँ है इस्लाम में, हुक्म किसका है, नबी करीम सस्म हुक्म, और मैं उसको क्या कह रहा हूँ, सख्ती कह रहा हूँ, अंदाजा लगाएंगे कितना कंट्रास्ट हो गया उस आदमी की शक्ल देखते रहते हैं, और हम तो इतने यूज टू हो गए, इतने आदि हो गए इस बात में, असर ही नहीं होता उसके वजह से, वो आदमी क्या कह रहा है कि कौन सी जात है जो मना कर रही है, बता रही है, वो तो हमें बचा रही है, अब वो कह रही है तो सख्ती है इसमें, इस्लाम में इतनी सख्ती आप कहाँ से ले आए, जिंदगी गुजारनी है दुनिया में भी रहना है हमने, ये क्या काम हो गया, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह की नहीं समझ, तुम उसको सख्ती कहते हो, ये तो मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, ये तो मेरी हमदर्दी है, फरमाया कि जो आदमी आग से बचाएगा वो खैर ख्वाह होगा या आपको जुल्म करेगा आपके साथ, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के नबी से ज्यादा और कौन खैर का हो सकता है, मुझे बताएं कोई है किस तरह खैर का, तो आपकी ज़ाते गिरामी से हो जो उम्मत को बचाना चाहते, तो पता ही चला भाई ये जो है गुनाह के पीछे जो कशिश है, लज्जत कह लें, मजा कह लें, कशिश कह लें, यह है आर्टिफिशियल, ये हकीकी नहीं है। हकीकी तो मजा नहीं है। होता क्या गुनाह के बाद? अल्लाह अकबर, लज्जत भी खत्म हो जाती है और जहन्नुम की आग भी उसको मिल जाती है। एक दिन उसको पता लग जाता है कि भाई ये मुझसे बड़ा गलत काम हो गया, और फिर पछताना तो आप पता है खत्म, वक्त गुजर जाता है आदमी, वक्त ही गुजर जाता आदमी। फरमाया ये जा रहा है कि इंसान तवज्जो करे इस चीज पर, गुनाह जो है जिस वक्त इंसान की रगबत हो रही है तवज्जो करे उस वक्त, कभी भी ना समझे कि छोटा है बड़ा गुनाह, नहीं, मना किया गया है, आ गई अल्लाह की फरमान, ये आग है, तवज्जो करो इस बात पर, आज निकल तुम्हें आग जला देगी, आग जिस तरह परवाने को जला दिया। तो उस लज्जत को लज्जत मत समझो। हाँ, लज्जत किस में है? सुभान अल्लाह, लज्जत तो उसमें है जो मेरे बताए वो अमल है, सुभान अल्लाह, वो असल लज्जत उसमें मिलती है। एक तरफ वो नफ्स की लज्जत है तो आग है, वो नफ्स वो लज्जत नहीं है, लेकिन जो अमल मैंने बताए हैं, जो अमाल मैंने बताए हैं वो करके देखो, उसकी लज्जत में पता लगेगी असल लज्जत है, वो दायमी लज्जत होगी। सुभान अल्लाह, जितने भी अमाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, और क्यों ना उसमें लज्जत हो, दुनिया की किसी चीज़ में इतनी लज्जत नहीं हो सकती। क्यों? कि जिस ज़बान मुबारक से वो अमाल सादिर हुए हैं, लाखों दुनिया की शहद जमा कर दो तो ऐसा मीठी ज़बान किसकी हो सकती है? ऐसी मीठी जबान किसकी होगी जिसकी मीठी जबान से कोई अमल निकल रहा हो? नहीं पता उसकी मिठास कितनी होगी, उसमें लज्जत कितनी होगी, जो आपने एक अमर बता दिया कि ये करो, तो आपने फरमाया तहज्जुद पढ़ो, आपने फरमाया कुरान की तिलावत करो, बताए ये अब हम पता था ये दिनों का तिलहज्जा के दिन, तो मैं वही शाम है, वही सुबह है, वही खा रहे हैं पी रहे हैं, हमें क्या पता था, हमें पता इसकी क्या लज्जत है? नहीं, उस जबान वारिश से जब निकला ये लफ्ज, यही जो 10 दिन है भाई, अल्लाह के नबी शब्द है कि अल्लाह ताला को बेनतहा महबूब और पसंदीदा है, इन दिनों में जो अमाल किए जाएंगे वो उन दिनों से बहुत ही ज्यादा अफजल होंगे जो आम दिनों के अंदर है। तो जो इस बात को समझ गए उन्होंने तो उसकी लज्जत ले ली, मजा ले लिया, पैगाम पहुंच गया, महसूस किया अल्हम्दुलिल्लाह कि वाकई इसमें बड़ी चीज है भाई, जबरदस्त चीज है। जब आदमी उसकी शुरू कर देता है उस अमल को करने के लिए, इंशाल्लाह आस्ता आस्ता उसकी लज्जत, उसका लुत्फ ऐसा शुरू हो जाता है कि फिर वो छोड़ देता है सारी दूसरी चीज़ों को, छोड़ता चला जाता है। क्योंकि जाहिर है एक चीज़, जब आपको लज्जत आएगी तो बेलज्जत चीज़ आपसे खुद छूट जाएगी। तो जब अल्लाह के नबी से बताया कि अमल करेंगे तो वो अमल जो गुनाह वाले अमल आग वाले, वो खुद को छूटते चले जाएंगे, खुद को छूट जाएंगे। क्योंकि जाहिर है ठंड और गर्म में तो जाहिर है एक फर्क तो नजर आएगा, भाई ठंडी जगह है, बेहतरीन जगह है, तो आदमी कौन जाएगा गुनाह की तरफ, उसके फिर दिल उचाट हो जाएगा, उससे खत्म हो जाएगी। तो जो अमान तबीक से हमने शाद हुआ है उसको कोई छोटा ना समझो किसी अमल को भी। अब ये देख रहे हैं आप, ये एक ही अमल है इस 10 दिनों का। हज़रत आयशा सदीक़ा से एक रवायत मिलती है, अबू बरकात रहमतुल्लाह ने ये शाद फरमाया, और गौस पाक रहमतुल्लाह ने भी इस तसनीफ में लिखा है वाक़या कि एक शख्स था, गाने बजाने करता था, फजूल बातें करता था, उसकी ज़िंदगी थी फराफात ज़िंदगी। लेकिन जब ये 10 दिन आते थे तो सरकार दोस्तों की ये बात उसके जहन में थी, सुभान अल्लाह, ये अमल उसके जहन में था बात। तो जैसे वो चांद देखता था लज्जा का, वो सब छोड़ देता था चीज़ें, सुभान अल्लाह, सब छोड़ के वो रोज़ा रखना शुरू कर देता था। तो आयशा सदीक़ा फरमाती हैं कि ये इस आदमी की खबर जब नबी करीम को पहुँची कि एक इतना फासिक आदमी है, सारा जिंदगी ऐसे गुजारता है, उसे ज़िलहज्जा का चांद नजर आता है तो उसकी दुनिया बदल जाती है। देखिए आप, एक अमल पर दुनिया बदल गई, उसने रोजे शुरू कर दिए और सारे खराफात छोड़ दिए कि 10 दिन मैं यही काम करूँगा। सुभान अल्लाह, अंदाज़ा लगाए उस आदमी की। अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़ौरन उसको बुलाओ मेरे पास, कितनी अप्रिशिएशन है मुझे बताएं किसी अमल की। आज भी अगर हम वो अमाल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं और जो हम तक पहुंच जाए उसको हम कायम कर दें, चाहे मज़ा आए ना आए, लज्जत आए ना आए, लुत्फ आए ना आए, लेकिन एक बात पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा है, बस खत्म, बस खत्म, फिर जरूरत ही कोई नहीं इन चीजों को तलाश करने की। वो सब धोखा होगा, फ्रॉड होगा, नफ्स होगा, क्योंकि एक तरफ पूरी दुनिया को रख दें, एक तरफ मेरे आका के कॉल को रख दें, वजन हो सकता है इस चीज का। फौरन समझ जाए कि सारी बकवास है जो इस अमल को रोकने के लिए की जा रही है, हो ही सकता मैं नमाज छोड़ दूं, दिल नहीं कर रहा, पसंद नहीं है नमाज, नींद आ रही है, कुछ आ रही है, जैसी भी हालत में है पहुंच जाओ तहज्जुद के लिए, आंख बंद भी आंख जो कुछ भी है यार, टोलते टालते भी अगर इतना मौका भी मिल रहा है कि आप तहज्जुद के लिए वजू कर लें, और मुसल्ले पे आते आते देखा तो टाइम निकल गया, दो मिनट ऊपर हो गए, परवाह ना करें, इंशाल्लाह तहज्जुद का सवाब मिल गया। क्योंकि हम लड़े हैं नफ्स से, हम पे गालिब क्या चीज रही है, अल्लाह के नबी इसमें कौन मुबारक जो अफजल है, इनाम इसका है, अमल का इनाम नहीं होगा। क्यों? कि हमने कदर की, हमने कदर की उस कौल की जो अल्लाह के नबी ने हमने शायद समझा ऐसा है, तो उस कौल से नफ्स से लड़ते लड़ते आखिर जीत गया, जीतने में ज़्यादा वक्त तो लगा और इतना टाइम मुझे नहीं मिला कि वजू करके मैं दो रकात पढ़ता, आखिरी दाव जो नफ्स मारेगा क्या फायदा है यार, तो वजू करेगा तो तहज्जुद खत्म हो जाएगी। अक्सर होता है लोगों के साथ, मेरे साथ तो होता है, आप तो नेक आदमी है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो यही काम करता हूँ कि चल वजू ही कर ले यार, कुछ नहीं तो तहज्जुद का सवाब मिले। क्यों? तो गलबा गालिब होता है इस चीज़ का, अल्हम्दुलिल्लाह कि नहीं अल्लाह के नबी ने फरमाया यार उठ जा, उठता हूँ यार, यार चलो फर्ज तो नहीं है फर्ज, या अल्लाह के नबी ने फरमाया तहज्जुद के बड़े सवाब हैं। अब ये लड़ाई झगड़ा होते होते आखिर अल्हम्दुलिल्लाह नफ्स को जीत करके मैं खड़ा हो गया, अब मैंने वजू किया और देखा जहाँ एक मिनट था, मैं रुका नहीं मिनट से भी, बात ही नहीं, वजू करके मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसल्ले तक पहुँचा, अल्लाह ने कह दिया इसको सवाब तहज्जुद कर ही दिया जाए। जो कदर की इसने मेरे हबीब की बात की, आखिर वो जीत किया इस मामले में, यह एक फाइट इंसान की हर चीज में। तो उस आदमी ने, उस गवैये ने, गाने वाले ने अल्लाह के नबी की बात सुनो तो अल्लाह ने फौरन बुलाया उसको, सोचा नहीं यार गाने बजाने वाला आदमी, तो भाई हम बे इंसाफ, हमसे ज्यादा गुनाहगार कौन होगा, मुझे बताए सारे ऐब हमारे में मौजूद हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह की रहमत देखें कि इस पर ना जाए। जैसे 10 दिन बता रहा यार 10 दिनों में क्या मिल जाएगा यार, छोड़े इतने गंदे काम में करता हूँ यार, अभी तो मैं करके छुटाऊँ यार, छोड़ो यार, नहीं नहीं कि कौन आ रहे हैं, तो एक कौली जिंदगी इंसान पकड़े नबी एक सुन करके इसमें फायदा। सरकारी तो उसको बुलाया, वो हैरान, उनको पता क्या मैं गलती कर बैठा, हुई बड़ा शर्मिंदा कि यार मैं किस मुँह से जाऊँ, अब तो आज तो मेरी पकड़ होगी, तू क्या कर रहा है गुनाहगार इंसान, शर्म तुझे नहीं आती, ऊपर से गुनाह करता है, ऊपर से तू रोजे रखता है, जीवित होता है ना, और इतना गुनाहगार आदमी बड़ा तू अपने आप को समझता है, आके नमाज पढ़ना शुरू कर दी, ये तू अपनी शक्ल देख, अपने फलां देख, लोग ताने देने शुरू कर देते हैं। उसने कहा भाई तो आज मेरी क्षमत आ गई, मैंने बड़ी गलती की, किसने बता दिया मैं रोजे रख रहा हूँ, उधर क्या हो रहा है, हो गया तो अल्लाह सभी ने ऐसी शफकत और मोहब्बत से देखा, उसकी जिंदगी बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। यार सुना आपने मुझे बुलाया, हुक्म फरमाया, क्या बात है, मुझसे क्या गलती हुई, मैं कोई ऐसा काम तो किया ही नहीं जी बिल्कुल, आज अब तो नहीं कर रहा, बारा पीछे करता। कहना तू क्या कर रहा है, मुझे रिपोर्ट दे, जब से दिल जाए तो मैं झूठ तो नहीं बोल सकता जी, और समझा जी जो अमल कर रहा हूँ इसमें मुझे डांट पड़ेगी, मैं बता दूं जी मैं जो करूँगा, बता क्या कर रहा है, कहता जी मेरी याद बन गई है ये जल जगह चांद, मैं आप ही का कौल मुबारक है यार सोच रहा हूँ, मैं अपनी तब से तो नहीं कर रहा, मेरे दिन में तो ये बात आपकी उतर गई और मेरा जमीन नहीं मानता कि मैं आपकी बात को ना मानूँ, ये जल जगह चांद जैसे ना जाते मैं सारे गाने बजाने फेंक देता हूँ और रोजे शुरू कर देता हूँ, आ जाएगा वो आगे बेचारा डरते, कहता तेरे एक रोजे का सवाब जो है ना, एक रोजे का सवाब ऐसा है जैसे तूने 100 गुलामों को आजाद कर दिया, 100 ऊंट तूने हज पे कुर्बान कर दिए, और तुम तब अल्लाह के नबी सबसे जबान से उसकी बशारतें निकलना शुरू हो गई। देखा क्यों कि आपके कौल मुबारक किसने कदर की, आपसे उसने फरमाया कि ये काम गलत है, मत करो, इसमें लज्जत है, उसमें लज्जत होगी। इतने बड़े मुहद्दिस गुजरे, बहुत बड़ा मुकाम है मुहद्दिसीन में, सॉरी रहमतुल्लाह अलैह, और कबायर औलिया अल्लाह के अंदर है, उनकी एक बात मुझे याद आती, कबायर औलिया अल्लाह के अंदर देखते हैं, उन्होंने मस्ती के अंदर बड़ी खूबसूरत बात की, मुहद्दिसीन बड़ा शुमार उनका, कहते हैं बात दरअसल यह है कि तुम मेरे जिक्र पे ताज्जुब करते हो, बड़ी कसर से जिक्र करते थे अल्लाह को, लेकिन आप इतने बड़े आलिम भी थे, मुहद्दिस भी थे, अल्लाह वाली भी थे, और कसम देखें ये सूफियों का उन्होंने अल्लाह का जिक्र करना, बड़े बड़े उलमा कराम अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो समझ जाते हैं आलिम मतलब जानने वाला, हम तो जानते नहीं, तो जानते हैं इसकी इसकी कदर क्या है, उनको पता है कि नबी अकरम इतनी इसमें कितने अकवाल हैं, हम एक कौल पे अगर इंसान अमल कर ले आपके तो उनको भी इतने कौल मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी जल्दी से मिलते हैं। तो कहते तुम मेरे जिक्र पे ताज्जुब करते हो, जो मैं दिन रात शाम से शुरू होता हूँ ईशा से सुबह तक मेरा जिक्र शुरू रहता है, अल्लाह को याद करता हूँ। बस मैं एक बात बताऊँ कि जी साहिब कशफ आदमी थे, पहले तो कसम खाई, उन्होंने कसम खा के फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर जितने बादशाह हैं, बड़े बड़े सल्तनत के मालिक लोग जो हैं बादशाह, अगर उनको ये पता चल जाए कि मुझे जिक्र से जो लज्जत मिल रही है, बोले सुभान अल्लाह, ये है जो हम जिक्र कर रहे हैं अल्लाह ताला कि जो जिक्र से मुझे लज्जत मिल रही है, तो मैं कसम खाता हूँ अल्लाह ताला की कि सारे बादशाह जो है ना सल्तनत लोग छोड़ के मेरे पीछे आ जाए, सब छोड़ रहे हैं। इसमें क्या मजा है, बादशाहत में, औरतों में, पैसों में, इन चीजों में, तो उनको नजर ही कुछ ना आए। क्यों? मैं जिस जबान ने ये बात कही, उसकी जबान बड़ी मीठी थी, सुभान अल्लाह, तो जिक्र में क्यों ना मिठास हो, मुझे पता है। एक और हदीस मुझे याद आ गई जिक्र के बारे में, जब हम कलमात पढ़ते हैं ना दोस्तों, सुभान अल्लाह सुभान, कितना अल्लाह का करम है, दो कलमे पढ़ लेते हैं, तीन कलमे, लेकिन हमें इतने कलमों से अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी है कि कुछ भी हो हमें दिल करता है कि सारे कलमात पढ़े। थोड़ा वक्त भी वो दिल करेगा यार जो कलमात हैं उनको सबको पढ़े, कलवे ये सारे इसमें इसमें आज़म है, हज़रत फजल कशीर रहमतुल्लाह सारे इसमें आज़म है, जो हम पढ़ते हैं ख़त्म काजी खाने के, सारे इसमें आज़म है, यानी इस एक इसमें आज़म उसको कहते हैं कि इस एक कलमे के वसात से आप जो दुआ मांगेंगे वो कबूल हो जाती है, या हय्यु या क़य्यूम के बाद दुआ मांगे कबूल हो जाएगी, ये तो हदीस सुन रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह सुभानहू को मुख्त अल्लाह वालों को अल्लाह ताला ने हर कलमे पे दिखाया है कि इस दुआ इससे दुआ कबूल होती है, इसी तो हर बुजुर्ग के इन कलमात पे एक अपना अंदाज था, आप शागिर्द को बताते थे कि ये कलमे पढ़े आप दुआ कबूल होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह सुभानहू क्या चीज़ है मुझे बताया, जिसको हम क्या कहते हैं आयत करीमा कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हदीस के लफ्ज ये हैं कि जो भी इंसान कलमात जिक्र में पढ़ता है तो वो कलमात जो ज़मीन से उठते हैं आसमान की तरफ बढ़ते जाते हैं अर्श तक पहुंच जाते हैं, फिर अर्श के गिर्द वही कलमात चक्कर काटना शुरू कर देते हैं और उस चक्कर काटते रहते हैं और उस आदमी ने जिसने उस कलमों को पढ़ा है उसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। बड़ा कौल है, अब कौन छोड़ दे इसको, जिसको नबी करीम सुन की कौल मुबारक पर यकीन हो तो उसकी लज्जत को इंसान कैसे इनकार कर दे, और जब एक मुकाम पे उस लज्जत तक पहुंच जाता है आदमी, मुझे बताएं कि उसका कलमा अर्श पे चक्कर काट रहा हो तो क्या वो इंसान जिसने पढ़ी है उससे उसका कोई कनेक्शन नहीं होगा, उसकी रूहानी ताकत क्या हो जाएगी, उसका नूरान कैसे हो जाएगा, नूरानी कैफियत उस इंसान की कैसी हो जाएगी, क्या वजदान होगा उसके अंदर, मुझे बताएं। तो कहने का मतलब यह है कि गुनाह जो है, गुनाह एक आग है, इसको सुन ले अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, उसको आग ही समझे और उसमें जो लज्जत है जो हमसे वो करवा रही है वो क्या है, आर्टिफिशियल है, वो दायमी नहीं है, उसके मुकाबले में जो अमल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दायमी है, उसकी लज्जत भी दायमी है। तो कभी भी गुनाह ना करे आदमी, वो लज्जत बहुत बुरी है, जैसे दिल कह रहा ना यार बड़ा मजा आएगा उसको देख लो, बड़ा मजा आएगा ये चीज़ कर लो, बड़ा मजा आएगा यार फलां काम कर लो, सो जाओ यार दो मिनट और सो जाओ, जमात से नहीं यार घर पढ़ लेंगे नमाज, जमात में क्या जाना, ये सब लज्जत है गुनाहों की, ये आग है अल्लाह नहीं फरमाता है, और मैं इस आग से बचा रहा हूँ तुम्हें, जो मेरा कॉल आ रहा है इसके मुकाबले में, मेरा कॉल आ रहा है कि तुम नमाज के लिए जाओ फजर पर, ये मेरा कॉल आ रहा है अल्लाह नहीं फरमाता है, तो ये क्या है, और तू उस पर पढ़ा है तो मैं तुझे आग से निकाल रहा हूँ हकीकत, तो अब जल रहा है उस बिस्तर पे, तू समझते आराम मिल रहा है बिस्तर पर, और जो राहत तुझे मिल रही है वो राहत नहीं है अल्लाह ने फरमाया, मैं जानता हूं ज्यादा, इसको तू राहत समझ रहा है, ये आग है जिसमें तू आग में जल रहा है, परवानी की तरह से उसको वो राहत समझ रहा था। तो अल्लाह ताला हमें भाई समझ भी दे और इसकी तौफीक भी दे कि हम इसको समझ सकें कि जब गुनाह हो तो उसको समझिए, तो भाई बड़ी चीज हम कर रहे हैं तो अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, तो आग है ऐसी आ गई जिसको मैं महसूस नहीं करूँ, लेकिन आप डर रहा हूँ तुझसे, परवाने की तरह खत्म हो चुका हूँ, खाश हुआ हूँ। इंशाल्लाह जैसे हम इस पर कुछ अमल करेंगे, अल्लाह की फजल व करम से लज्जत भी आएगी और गुनाहों से भी बच जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह फजल फरमाएंगे इंशाल्लाह।